ओम शांति। तो आज हम शक्तियों की बात करेंगे। अभी तक हम गुणों की बात कर रहे थे। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग संसार में ऐसे भी हैं जो बिना मेडिटेशन के भी तो जी रहे हैं ना, आध्यात्मिकता के बिना जी रहे हैं ना, तो फिर हम मेडिटेशन क्यों करें? उस क्यों का उत्तर है कि राजयोग के नियमित अभ्यास करने से हमारे अंदर गुण वृद्धि को पाते हैं, गुणों की वृद्धि होती है। और जिस मनुष्य आत्मा के अंदर गुण बढ़ने लगते हैं, उनके अंदर नेचुरली कुछ शक्तियां विकसित हो जाती हैं। नेचुरली कौन सी शक्तियां विकसित होती हैं? हर मनुष्य आत्मा के अंदर ऐसे तो बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन आत्मा के अंदर मुख्य रूप से 8 शक्तियां होती हैं, 8 शक्तियां। ये परमात्मा ने हमें पुनः अपनी शक्तियों से परिचय कराया कि बच्चे, हर आत्मा को कहा, बच्चे आपके अंदर शक्तियां मौजूद हैं। कौन सी शक्ति? जो रोजमर्रा के जीवन को जीने में सहयोगी हैं। अष्ट शक्तियां, जैसे एक है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। आपको क्या लगता है आज के समय में लोगों के अंदर सहन शक्ति है? क्या लगता है या नहीं है? बहुत कम है। अच्छा, बच्चों में है सहन शक्ति, युवाओं में है, है बुजुर्गों में है, है आपके घर में जो बुजुर्ग हैं सहन शक्ति अच्छी है? आजकल देखने में आता है शक्तियों की कमी सब जगह है। अच्छा, आप बताइए, सहन करना शक्ति है या कमजोरी है? जी, इसलिए क्योंकि इस चार्ट में है, उसके बाद वो कमजोरी है। एक हद तक सहन करना शक्ति है, उसके बाद वो कमजोरी बन जाती है। तो कमजोरी है या शक्ति है? शक्ति है। देखो, लोग कहते हैं आजकल कलयुग है ना, सभी डेफिनेशंस बदल दिए लोगों ने, अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लिए। लोग कहते हैं सहन करने से तो काम नहीं चलता, सहन करने से लोग हमें कमजोर समझते हैं, सहन करने से तो लोग हमारे को बुद्धू बना देते हैं, सहन करने से काम नहीं बनता आजकल, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु हम ऐसा कहते हैं, सहन करना, सहनशीलता अपने आप में शक्ति है। अगर कोई मनुष्य आत्मा सहन कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सहन करना कहते किसको है। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपके घर में एक बहुत महंगा फूलदान रखा हुआ था, जो आप अभी अभी कहीं से खरीद कर लाए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो फूलदान टूटकर गिर गया, गिरकर टूट गया। अब वो फूलदान टूट गया, गलती हो गई, तो हो सकता है आपके परिवार में से कोई उनको बार बार कहे, क्या करते हो, ऐसे थोड़ी करना होता है, ऐसे भी कोई करता है क्या, ध्यान से नहीं चल सकते क्या, ध्यान तो रखना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जल्दबाजी करनी, वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। अब वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय के चुप रहने के। क्यों? क्योंकि गलती उन्हों की है। लाइफ में कभी कभी हम गलतियां करते हैं और गलतियां करने के बाद हमें सुनना पड़ता है, और सुन करके हम लाइफ में क्या बोलते हैं, हमने तो जीवन में बहुत सुना है, हमने तो जीवन में बहुत सहा है। जबकि सुनना सहन करना नहीं होता है। हमने सुना क्यों? गलती मेरी थी, गलती नहीं करेंगे तो नहीं सुनना पड़ेगा। सुनना सहन करना नहीं होता। सहन करना किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई सिचुएशन है, उसमें कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या कोई ऐसी बात हो गई है, कड़वी बात हो रही है, कुछ बहस हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस समय कोई हमें ऐसा वैसा क्रोध में कुछ बोल रहा है, उस समय मेरे पास दो चॉइस है। एक, मेरे मन में जो आया मैंने निकाल दिया, सुना दिया, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर वन, रिएक्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने देखा, मैंने परख लिया, अभी अगर मैं बोली तो हो सकता है ये बात बिगड़ जाए, चलो 10 मिनट चुप रहती हूं, उनको बोलने देती हूं जो बोलना है, शाम को बात करेंगे, कल बात करेंगे सुबह आराम से। वैसे भी इस समय मैं देख रही हूं कि सामने वाली आत्मा की हजम करने की शक्ति ऐसी है ही नहीं कि वो मेरी बात को इस समय समझ भी पाए। वो जो 10 मिनट में चुप रही ना, दैट वॉज माई टॉलरेंस पावर, वो मेरी सहन शक्ति थी। क्यों? मैंने बाय चॉइस डिसाइड किया इस समय मेरा चुप रहना बनता है, और वो मेरी शक्ति थी। नहीं तो दूसरे केस में तो मैं निकाल ही रही थी ना रिएक्शन करके, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप देखो, वो भी तो चॉइस है। तो कहने का भाव क्या है? अगर हम सहन करते हैं तो बहुत ताकत वाली आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। हाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए, सारा जीवन देखिए किसी को भी सहन नहीं करना पड़ता है, हर समय सहन नहीं करना पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं, दीदी हम ही हमेशा क्यों सहन करें, मुझे ही क्यों मरना पड़ता है, मुझे ही क्यों सहन करना पड़ता है, हम ही हमेशा क्यों चुप रहे, हमें ही सहन करने को क्यों कहा जाता है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आप हमेशा सहन नहीं करना, हमेशा मत करो, लेकिन जहां आपका सहन करना बनता है, बनता है, जहां आपके थोड़े से चुप रहने से कोई काम बन रहा है, जहां थोड़े से शांत रहने से कोई बिगड़ती हुई बात बच रही है, जहां थोड़े से चुप रहने से, सहन कर लेने से परिवार में कोई संबंध की सुरक्षा हो रही है, वो रिश्ता टूटने से बच रहा है, जहां आपका सहन करना बनता है, क्या आपसे वहां सहन होता है? या हर बार हम यूं ही कह के निकल जाते हैं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, हमेशा मुझे ही क्यों कहा, और कभी हम सहन कर ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ओम शांति। समझ आ रही है? हाँ, तो सहन करना कमजोरी नहीं है, सहनशीलता एक शक्ति का नाम है। लेकिन हाँ, मुझे पता होना चाहिए कितना सहन करना है, किस हद तक मुझे सहन करना है, किस बात के लिए सहन करना चाहिए, और किस व्यक्ति के साथ मुझे सहन करना है, ये मुझे पता होना चाहिए। अब ये मुझे कौन बताएगा? इन शक्तियों में आप देखिए, 8 शक्तियां दिखाई है ना आपको, शायद पता नहीं पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन शक्तियों में सहन शक्ति के साथ साथ एक है परखने की शक्ति। हमारी अपनी ही आत्मा के अंदर जो परख शक्ति होती है, वो परख शक्ति हमको बताएगी, समय पर बताएगी, गाइड करेगी, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आत्मा हमारा सबसे अच्छा गाइड है। एक इंसान के लिए सबसे अच्छी गाइडेंस कहां से आती है? अंतरात्मा की आवाज। वो कभी गलत नहीं होती, वो कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सत्य की ओर आपको अग्रसर करेगी। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम बहुत बिजी हो गए हैं ना, और हमें क्या लगता है, बस नौकरी कर लो, बाल बच्चे पाल लो, और पढ़ा लिखा कर उनको बड़ा करके नौकरी दिलवा दो, अभी बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज ही सुनना बंद कर दिया है, या सुन करके भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारी अपनी ही आत्मा हमें गाइड करती है कि हमें कब सहन करना है, कितना करना है, किस बात के लिए करना है, किस व्यक्ति के साथ करना है, ये गाइडेंस हमको मिलती है। ये आत्मा की नेचुरल शक्ति है। अब आप अगर चित्र में देख सकते हैं, एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं और एक बच्चा उस पेड़ को पत्थर मार रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है? एक चित्र है, वो सहन शक्ति का चित्र है। उसके ठीक सामने एक और शक्ति है, बगल में नहीं, उसके ठीक ऑपोजिट साइड में एक चित्र है जिसमें मृत्यु का सीन दिखाया गया है और उसमें लिखा है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। वन इज टू पावर टू टॉलरेट, टॉलरेंस पावर, द अदर इज पावर टू फेस द सिचुएशंस एंड पीपल। तो सामना करने की शक्ति क्या होती है? सामना करने का मतलब लड़ना नहीं होता है, सामना करने का मतलब होता है कोई भी परिस्थिति को हिम्मत के साथ हम फेस कर सकें, सामना कर सकें। और सामना करने का मतलब लड़ना इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि सामना करने का मतलब होता है अगर हम राइट हैं, बहुत बार हम राइट होते हैं ना, हम गलत नहीं होते हैं, हम सत्य के साथ होते हैं। अगर हम राइट हैं, अगर हम सत्य हैं, तो अपनी राइट बात को सामने वाली आत्मा के पास प्यार, स्नेह, सम्मान और सभ्यता को बनाए रखते हुए अपनी सही बात को देना आना चाहिए। इसका मतलब बोलना आना चाहिए। एक है चुप रहना आना चाहिए और दूसरा बोलना आना चाहिए। अक्सर करके क्या होता है कि जब हम बहुत बार राइट होते हैं, गलत नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उस राइट बात को दे रहे होते हैं ना, उस समय हमारी जो मन की स्थिति होती है वो कैसी होती है? पुरानी बातों का प्रभाव है मेरे मन में, सत्य बोलते समय चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, गुस्सा आया हुआ है, क्रोधित मन के साथ, पुरानी बातों के प्रभावित मन के साथ, ईगो के साथ, अहम भाव, मैंपन, मेरी बात कैसे नहीं मानी जाएगी, मैं ठीक बोल रहा हूं, इस मैंपन की अहम भाव के साथ, अहंकार के साथ हम सत्य को देते हैं, सत्य को देने की कोशिश करते हैं। सामने वाला क्या करता है? क्या करता है? आप चाहे कितना भी सत्य बोलो, उसको हजम नहीं होगी, वो रिजेक्ट कर देगा। सामने वाली आत्मा को वो सत्य कड़वा लग रहा है, पता है क्यों? और फिर हम क्या कहते हैं? सच बोल रहे हैं ना, इसीलिए कड़वा लग रहा है। सच तो होता ही कड़वा है, लेकिन आपको पता है सच अपने आप में कभी कड़वा नहीं होता। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, क्या उसकी कोई बात हमें कड़वी लगती है? लगती है ईश्वर? अच्छा, अभी तक आपको कोई भी बात कड़वी लगी? सत्य ही तो बोल रहे हैं, कड़वी तो नहीं लगी ना? भगवान के महावाक्य कड़वे तो नहीं लगे ना? सत्य कड़वा नहीं होता है, लेकिन सत्य को देने की विधि, उस विधि में अगर हमने कड़वाहट, अहम भाव, अहंकार, क्रोध, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, पुरानी बातों का प्रभाव, ये सब मिक्स करके जब हम सत्य देते हैं ना, वो सबको कड़वी लगती है। फिर आप जितना मर्जी सच बोल लीजिए, किसी को हजम नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए? क्या हमारे अंदर वो ताकत है? हमारे में वो शक्ति है? क्या हमारी मन की स्थिति ऐसी है कि हम अपने मन की स्थिति को सकारात्मक रखते हुए शुभ भावना और शुभ कामना को बनाए रखते हुए सत्य बात सामने वाली आत्मा तक पहुंचा सके, सभ्यता और सम्मान को बनाए रखते हुए स्नेह से? पॉसिबल? पॉसिबल? क्या कहेंगे? कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसा लग रहा है आप लोग यहां है ही नहीं। शरीर तो बैठा है, आत्मा यहां है या नहीं है, या अभी बाहर प्रकृति में चक्कर लगाने चली गई? भूख तो नहीं लग रही? हाँ, अच्छा। तो अगर हम कहें कि आश्रम में आज हम लोगों ने प्रसाद में खीर बनाई है, आपको एक कटोरी खीर की देते हैं और उसमें कटोरी भर की खीर है, लेकिन सिर्फ 7-8 बूंदे, 8-10 बूंदे करेले का जूस मिक्स किया है, ज्यादा नहीं किया, 8-10 बूंदे करेले की जूस का मिक्स करके आपको देते हैं, अब आपको खीर कैसी लगेगी, मीठी या कड़वी? खीर अपने आप में कभी कड़वी नहीं होती है, खीर तो मीठी होती है पर उसमें कड़वाहट मिक्स कर दी गई, इसलिए वो कड़वी हुई। ठीक है, तो हम कैसे अपने बात को रखें, किसी का सामना भी अगर हमें करना है, किसी को कोई बात देनी भी है, कहनी भी है, तो वो किस मनोस्थिति से कहने से हम उस बात को ठीक रीति कह पाए, ताकि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर सके, ले सके। क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है? हम बार बार क्या कह रहे हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। सामने वाला ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो उसको अपनी शक्ति खुद बढ़ानी है, हमें क्या करना है, हमको अपनी शक्ति बढ़ानी है। शुभता, शुभ भावना, इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो किसी भी सिचुएशंस को फेस करने की, व्यक्तियों को फेस करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। कभी कभी क्या होता है, सहन करने की शक्ति भी हमारे अंदर होती है, सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर होती है, लेकिन इसका प्रयोग उल्टा कर देते हैं। जहां बोलना चाहिए, जहां सहन करना चाहिए वहां सामना करते हैं, जहां सामना करना चाहिए वहां सहन कर लेते हैं, फिर कहते हैं देखा सहन करने से तो हो ही नहीं रहा काम, उल्टा हो गया। अरे वहां तो सहन करना ही नहीं था, वहां तो बोलना था, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो कहां सहन करना है, कहां सामना करना है, ये हमारी अपनी आत्मिक, अगर आत्मा में, क्योंकि हमें परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य जो हम रोज सुनते हैं ना सुबह, हमारी क्लास उसी से शुरू होती है दिनचर्या, वो एक पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है। उस पढ़ाई और मेडिटेशन के साथ हम सारे दिन की दिनचर्या के सारे कामकाज निपटाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिलीवर करते हैं। तो वो जो पढ़ाई है ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात परमात्मा सिखाते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे, आप बच्चे हो ना कि बड़े हो, बच्चे हो कि बड़े हो, परमात्मा के तो बच्चे ही है ना हम सभी। तो हम बच्चों को शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जितना आप अपने मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखेंगे, मन को क्लीन, बुद्धि को क्लियर रखेंगे, माने साफ सफाई बनाए रखेंगे, उतना आपकी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बहुत अच्छे से काम करेगी। आज आप बुरा नहीं मानना इस बात का, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, परंतु आज इन जनरल संसार में देखने में आता है कि हमारा मन बहुत सारी बातों से मैला हो गया है ना ऐसा। वो शुद्धता जो आत्मा की महसूस होनी चाहिए, वो आज महसूस कम ही होती है, ना के बराबर। इसीलिए इतनी उथल पुथल है मन में, इसीलिए इतनी ज्यादा अशांति है। जितना मन शुद्ध उतना मन शांत, और मन की शुद्धि का मतलब है विचारों की शुद्धि, और शुद्धिकरण का मतलब है, शुद्ध कब होता है, जब उसके अंदर शुभता हो। हम सब चाहते हैं कि हम शुभ भावना रखें, पर जिस माहौल में हम सब रहते हैं वहां पे शुभता तो मिलती नहीं है, तो कहां से लाएं? दो ही जगह है, उसका सोर्स दो ही है, आत्मा और परमात्मा। इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो सामना करने की शक्ति में, जैसे एक और बात भी इसको समझ सकते हैं ऐसे कि आप देखो, जैसे आज किसी के जीवन में कोई घटना घट जाती है, किसी अपनों की मृत्यु हो जाती है, या किसी नजदीक की या दूर की किसी की मृत्यु हो गई, या कुछ और आर्थिक समस्या आ गई, नौकरी में दिक्कत आ गई, कुछ और बीमारी आ गई, आजकल तो ये सब हो रहा है ना, बहुत कुछ ये सिचुएशंस आते हैं लोगों के जीवन में। अचानक जब ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती हैं, एक है परिस्थिति आई और मुझे तोड़कर चली गई, और मैं सारा जीवन ये बोल रही हूं मेरे जीवन में ना ऐसा हो गया, अगर वो नहीं होता ना मैं पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाता। और एक है परिस्थिति आई, मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर चली गई, अब मुझे परिस्थितियों से डर नहीं लगता। क्यों? पहले से ज्यादा मन में ताकत आ गई, उस परिस्थिति को सामना करते हुए, खुद मेहनत करते हुए हम उसमें से बाहर आए हैं। आज घटनाएं जीवन में हो रही हैं, अचानक कुछ भी होता है, लेकिन लोग पता है आज क्या हो रहा है, जिस आत्मा में सामना करने की शक्ति नहीं है वो तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तुरंत एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं। जो नुकसान हुआ, जो घटना घटी, वो तो घटी, उसमें जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, ऊपर से मैं और नीचे चली गई मन की स्थिति से, अब मुझे ही रिकवर होने में 4 साल लग रहे हैं। तो मैंने समस्या बढ़ा दी या आई हुई समस्या का हल किया? बढ़ा दी ना, दोनों में से कम एक को तो हम संभाले। बाहर की परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मन तो हमारे कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि वो मेरा मन है ना। तो इसलिए टूटना नहीं है, बिना टूटे हम परिस्थितियों को पार, इतना ना टूट जाए कि समेटना ही मुश्किल हो जाए, इतना ना बिखर जाए मन के संकल्पों से, इतना ना कमजोर पड़ जाए कि हमारे आसपास वालों को डबल नुकसान उठाना पड़े। परिस्थितियां तो संभाल ही रहे हैं, हमें भी संभालना पड़ रहा है उनको। कम से कम हम अपने मन की जिम्मेवारी तो ले सकते हैं। आपका मन, आपकी मन की आज जो भी स्थिति है उसका कारण कौन है? आपके घर में एक दो बैठे हैं वो तो नहीं है, ऑफिस में जो है वो तो नहीं है, कौन कारण है? हमारा मन बिगड़ता भी हमारे कारण है, संभलता भी हमारे कारण ही वो संभल सकता है। तो शक्तिशाली आत्मा बनना है, मेडिटेशन करने से शक्तियां अर्जित होती, शक्तियां अपने आप नेचुरली बढ़ती हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बढ़ेगी। हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई, हमको सिर्फ मेडिटेशन क्लासेस अटेंड करनी है और जो कहा जाए वो करते रहना है, उससे आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर शक्तियां बढ़ रही हैं, पहले से ज्यादा आप टॉलरेट कर पा रहे हैं, पहले से ज्यादा आप सामना करने की शक्ति महसूस होती है, मनोबल अच्छा महसूस हो, आपको खुद महसूस आएगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी शक्ति, आप देख रहे हैं एक पिक्चर है ऊपर जिसमें एक सागर है और सागर में अलग अलग नदियों का पानी आकर गिर रहा है। आप में से किस किस को दिखाई पड़ रहा है ये वाला पिक्चर? दिख रहा है? ओके। सागर में, इसको कहते हैं समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट। हम सबके अंदर एडजस्टमेंट पावर होनी चाहिए ना, हम सबके साथ एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इनके अंदर एडजस्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, एकोमोडेट समा लेने की शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो अभी हम चेक करते हैं हमारे अंदर समाने की शक्ति कितनी है। समाने की शक्ति का अर्थ क्या होता है आत्मा के अंदर? जैसे सागर के पानी के अंदर अलग अलग नदियों का पानी आकर गिरता है, किसी नदी का पानी थोड़ा सा मीठा होता है, किसी नदी का पानी थोड़ा मैला सा भी हो सकता है, किसी नदी का पानी थोड़ा मिट्टी वाला भी हो सकता है, किसी नदी का पानी साफ भी हो सकता है, पर अलग अलग नदियों का पानी आकर सागर में मिलता है। सागर कभी मना नहीं करता कि आप मेरे अंदर मत आओ, आप मिट्टी वाले हो, वो समा लेता है। लेकिन सागर की एक विशेषता होती है, पता है क्या? वो जैसा था समाने के बाद भी वो वैसा ही रहता है। नदियों का पानी मीठा होता है, सागर का पानी खारा होता है। नदियों के मीठे पानी आने के बाद भी सागर अपनी विशेषता को नहीं छोड़ता है, सागर जैसा था वो वैसा रहता है। ऐसे ही हम कैसे प्रैक्टिस करें, दुनिया में बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं, पता लगती रहती हैं। जितनी भी बातें आपके मन बुद्धि तक पहुंचती है ना, चाहे फोन से पहुंच रहा है, इंटरनेट से पहुंच रहा है, व्हाट्सएप से पहुंच रहा है, लोगों से बात करने से पहुंच रहा है, कहीं देखने सुनने से पहुंच रहा है, जितनी भी बातें आपको पता चलती हैं, आपके मन बुद्धि तक पहुंचती हैं, उसको 3 बातों से हमेशा फिल्टर करिए, 3 फिल्टर लगाइए उसको। क्या वो सत्य है? क्या वो आपकी जिम्मेवारी है, क्या वो आपके वश में है? कौन से तीन फिल्टर्स? क्या वो सत्य है, क्या वो आपकी जिम्मेवारी से संबंधित है, क्या वो आपके वश की बात है? अगर आपकी जिम्मेवारी से कनेक्टेड कोई बात आपके पास आ रही है ना, फिर तो आपको चाहे कितना भी सहन करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सेवा करनी पड़े, सहयोग देना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि वो आपकी जिम्मेवारी से संबंधित है, आपकी जिम्मेवारी है उसको करना, तो उसको तो सारी मेहनत करके उसको पूरा करके आगे बढ़ना ही चाहिए। उससे हम बच नहीं सकते, ये तो मेरे से नहीं होगा, इतना नहीं कर सकते, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई बात आपके पास ऐसी आ रही है जो आपको नहीं पता कि सत्य है कि नहीं है, जो आपकी जिम्मेवारी से कनेक्टेड भी नहीं है सीधा और आपके वश की बात भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ जी, क्या करना चाहिए? हाँ, आवाज नहीं आई। छोड़ देना चाहिए, शक्ति है छोड़ने की। बहुत सारी बातें आती है ना, पता लगती रहती हैं, तो मन में प्रोसेस तो हो ही जाता है ना। जैसे कोई भी बात पता चली, वो प्रोसेसिंग होता है, अच्छा ऐसे, अच्छा इन्होंने, अच्छा इनका तो कभी नहीं सोचा था, अच्छा इन्होंने ऐसा, चलता है ना। फिर उसके बाद चलाने के बाद हमारे सामने जो कोई भी व्यक्ति आएगा ना, ऐसा हो नहीं सकता कि यहां कुछ चल रहा है और वो यहां से ना निकले। अगर मान लीजिए दो लोगों से हम बात कर रहे हैं, मिले उस दिन, तो यहां जो चीज चल रही है वो निकलेगा। आपको पता है ऐसा ऐसा हुआ, आपको पता है इन्होंने ऐसा कहा, वो निकलेगा ही निकलेगा। फिर थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद कहेंगे छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। वो पहले नहीं छोड़ सकते थे? टाइम एनर्जी वेस्ट करने के बाद अपना और सामने वाले का, फिर क्या कहते हैं, छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना। सारी प्रोसेसिंग करने के बाद हमें लगता है हमने छोड़ दिया, लेकिन आपको पता है आपने छोड़ा नहीं है, उसका इंप्रेशन यहां बन गया है। आपके पड़ोसी आपको कूड़ा ला करके दें, अपने घर का डस्टबिन ला करके दें, और आपने लिया और अपने घर के मिक्सी में उसको चलाया और फिर कहा अरे ये तो कूड़ा है, इसको तो रखना नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए। पर मिक्सी में चलाने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद आपने उसको उठा के फेंक दिया, मिक्सी का क्या? और रोज ऐसा चल रहा है, मिक्सी का क्या होगा? क्या होगा मिक्सर का? मिक्सर, मिक्सर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कूड़े के लिए नहीं बना था। और दूसरा, घर के वातावरण का क्या होगा? रोज कूड़ा पीसा जा रहा है, दूषित हो जाएगा, दुर्गंध आएगी, बदबू आने लग जाएगी। आज यही हाल यहां हो रहा है। आज लोग फेसबुक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, दुनिया भर का वीडियो और पता नहीं क्या 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 क्या, जो भी कुछ आजकल है, इंस्टाग्राम और भी क्या है पता नहीं, जो भी है, सारा दिन इंफॉर्मेशन 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 ले रहे हैं। कोई कुछ बात करके दे जाता है, कोई फोन करके दे जाता है, कोई व्हाट्सएप से भेज देता है, कोई मैसेज से भेज देता है, कोई इंस्टाग्राम में हम देख लेते हैं, कोई फेसबुक में देख लेते हैं, सारा दिन इधर आ रहा है। और फिर वो चलता जरूर है, हो नहीं सकता कि आपने आंखों से कुछ देखा और वो मन में ना चले, नॉट पॉसिबल। अब प्रोसेसिंग किया, फिर हमें लगा कि हमने तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम खाली था, थोड़ा टाइम पास ही तो किया, इतना तो करना ही चाहिए, हमें लगा हमने टाइम पास किया, लेकिन आपने टाइम पास नहीं किया। जो टाइम लगाया ना उसको देखने में, ऑब्जर्व करने में, वो यहां पर चला गया है सारा, मन में बातें बैठ गई हैं। अब क्या होगा? वो प्रोसेसिंग होगा, फिर थोड़ी देर के बाद कहेंगे छोड़ो ना। अब छोड़, ऐसा करते करते कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। अब क्या है, मन अचानक, किसी किसी का मन करता है ना, कभी कभी हमारे पास आते हैं कई लोग, सारे नहीं होते ऐसे, पर कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं, वो कहते हैं दीदी मेरा मन कर रहा है, मैं खूब रो खूब रो खूब रो, मेरा मन आजकल ऐसा हो रहा है, मेरे को खूब रोने का दिल करता है। और भाई लोग, फीमेल्स की टेंडेंसी थोड़ा रोने की जल्दी वाली होती है, तो इसलिए वो लोग तो ये कहते हैं। मेल्स क्या कहते हैं पता नहीं, आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं आजकल मेरा गुस्सा बढ़ गया है, पता नहीं आजकल बैठे बैठे ना किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उन्होंने मेरे कुछ नुकसान नहीं किया, उन्होंने मेरे को कुछ भी मेरे जीवन में खराबी नहीं करी, उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं, पता नहीं उनको देख करके मुझे ईर्ष्या सी हो रही है, जबकि मैं ऐसी हूं नहीं, पूरा जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन बैठे बैठे ईर्ष्या हो रही है, बैठे बैठे रोने का दिल कर रहा है, अचानक मन चुप हो जाता है, अचानक पता नहीं चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। ये पता है क्या है ये सारी चीजें, ये उस प्रोसेसिंग का नतीजा है, दुर्गंध आने लग गई है, पहले खुद को आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे आसपास जो लोग आएंगे ना उनको भी उसको वाइब्रेशंस, वो दुर्गंध मिलने लगेगा, क्योंकि दूर ही रहो तो अच्छा है, नजदीक आते ही दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो रही है, नजदीक आने पे दिक्कत क्यों हो रही है, अगर गुण मूर्त आत्मा होगी तो नजदीक आने का मन करेगा, लेकिन अगर दुर्गंध आएगी तो नजदीक आने की मन नहीं करेगा, फिर कहेंगे दूर रहो सुखी रहो। आजकल ऐसा हो गया है, तो इसलिए प्रोसेस नहीं करो, और उसके लिए कोशिश करना है जो हम अंदर ले रहे हैं ना, अपने मन बुद्धि और संस्कारों की शुद्धता को प्रोटेक्ट करना है, इसको सिक्योर करना है। आप सिक्योरिटी करते हैं ना, आप सिक्योरिटी में है ना, सभी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, फौज का काम ही होता है सिक्योर करना। सबसे पहले हम सीखें अपने मन बुद्धि संस्कारों की शुद्धता को हमें प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत मदद करेगी हमको। अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात आपके पास आती है जो आपके किसी काम की नहीं है, आपको पता लग गई, अचानक दूसरा व्यक्ति आकर के आपसे पूछ रहा है, आपको पता चला ये बात ऐसी है, फलाने की बात ऐसी है, तो क्या कहना चाहिए? अरे छोड़ो ना, चलो हम कुछ अच्छी बात करते हैं, आपको पता है आजकल मैं मेडिटेशन ट्राई कर रहा हूं, मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है, आप भी करके देख सकते हो। मतलब किसी और को भी मेरे अंदर वो बात दोबारा ना मिले, और मुझे भी मेरे विचारों में दोबारा वो बात जो मेरे मतलब की नहीं थी ना, वो दोबारा घूमती भी ना मिले। व्यर्थ बातें ऐसे आए और चली जाए जैसे कभी आई ही ना हो, इसको कहते समा जाना। जैसे सागर में अगर किसी नदी का पानी आकर के गिरे, एक बार उसके अंदर मिल जाए, सागर का हिस्सा बन जाए, उसके बाद वो आप ढूंढ सकते हो वो वाली नदी का पानी कहाँ है, ढूंढ सकते हो? उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही व्यर्थ और नेगेटिव बातों का अस्तित्व मेरे तक पहुंचते ही समाप्त हो जाना चाहिए, फिर वो नामो निशान नहीं दिखना चाहिए उसका, ना मुझे दोबारा मिले ना किसी और को दोबारा मिले। एक्चुअली समाने का मतलब होता है टू फिनिश इट ऑफ, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। समझ रहे हैं? किस किस को समझ आई ये बात? सभी को समझ आई? हाँ, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं टू लेट गो, छोड़ना किसी बात को। हम छोड़ कब सकते हैं? जब खत्म करेंगे तभी छूटेगा। खत्म नहीं किया, अगर मान लीजिए हमने सह लिया, मुख से कुछ नहीं बोला, सामने वाले को बोल ही नहीं सकते मुख से, ऐसे भी बहुत सारी बातें होती हैं, हमने अंदर तो रख ली, सहन तो कर लिया, पर समाया नहीं, खत्म नहीं किया, तो वो क्या करेगा? गुड़गुड़ करेगा अंदर, और कभी ना कभी निकलेगा जरूर, आज नहीं तो कल, किसी रूप में, भड़ास के रूप में, गुस्से के रूप में, अहंकार के रूप में, चिड़चिड़ेपन के रूप में, नाराजगी के रूप में, रोने के रूप में निकलेगा जरूर, क्योंकि हमने सहन किया पर समाया नहीं। समा करके खत्म करना जरूरी है, इसलिए कहा ये सारी शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। सिर्फ एक शक्ति होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, उससे पता क्या होगा, समाने की शक्ति नहीं होगी ना, घुटन हो जाएगी। अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, मन में बहुत सारे व्यक्तियों के प्रति गांठें बन जाएंगी, और वो जो मन की गांठें हैं ना, वो हमें कभी खुश नहीं रहने देगी, ठीक है? हाँ, तो इसलिए समाने की शक्ति को हमको बढ़ाना ही चाहिए, सहन शक्ति हमारे अंदर होनी ही चाहिए, शक्तिशाली आत्मा। पता है, अगर हम सही बात पर, सही विषय पर, सही मात्रा में, सही हद तक, सही व्यक्ति के साथ सहन करते हैं ना, उस सहन करने के बाद कभी भी मन में ये नहीं आएगा लोगों ने हमारा फायदा उठा लिया, हमें कमजोर समझ लिया, डिफीटेड फीलिंग नहीं आएगी, हार की फीलिंग नहीं आएगी, घुटन की फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपने सही जगह पर सहन किया है तो फीलिंग आएगी, शुक्र है भगवान का मैं चुप रह पाई उस समय, अच्छा हुआ ये बिगड़ती हुई बात बच गई, ऐसा ही मुझे करना चाहिए था। विजय की फीलिंग आएगी, फ्रीडम की फीलिंग आएगी, राइटियस होने की फीलिंग आएगी, डिफीटेड की फीलिंग नहीं आती है। पता है डिफीटेड कब फील होता है? दबा दबा सा फीलिंग कब आता है, हार की फीलिंग कब आती है, घुटन कब होती है? जब हम सहन शक्ति को ठीक से यूज नहीं कर पाए, या फिर सहने के बाद समा नहीं पाए, ठीक है? तो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति। अच्छा, आप ये बताइए, आज के समय में लोगों के अंदर ये शक्तियां भरपूर मात्रा में है, कम है या ज्यादा है? चलेगा काम बिना मेडिटेशन? चल जाएगा बिना आध्यात्मिकता के? चल जाएगा? चल जाएगा तो क्या करना चाहिए? इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा, हो सकता है आज हम सारी शक्तियों को ना कवर कर पाए, जब आप सेंटर्स पर जाकर 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स करेंगे ना, वहां पे ये सारी शक्तियों को आपको और डिटेल में बताया जाएगा। हम लास्ट एक शक्ति और कवर करेंगे, ठीक है? आई एम श्योर आप रिलेट कर पाएंगे। आत्मा की एक और शक्ति है, अगर आप देखें इस चित्र में, एक जौहरी बैठे हैं, और जौहरी में, जौहरी की विशेषता क्या होती है? जौहरी की विशेषता होती है, अगर उसको सच्चा हीरा जूठा हीरा मिक्स करके दे दिया जाए तो जौहरी की पारखी नजर इतनी अच्छी होती है, परख शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो जूठा असली और नकली के बीच में भेद कर सकता है, सत्य और असत्य के बीच में उसको भेद करना आता है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। ऐसे ही हमारी अपनी आत्मा के अंदर भी, आप लोग फोटो ना भी लें तो चलेगा, इस पिक्चर का आपको मिल जाएगा, ये सारा अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप फोटोग्राफी छोड़ दीजिए, आपको दे देंगे, जिसको भी चाहिए आप पूछ लीजिएगा, आपको ये चित्र तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो परखने की शक्ति, अर्थात परखना क्या होता है? जो बात जैसी है उसको वैसे का वैसा समझना, परसीव करना, ठीक से उसको देख पाना, इसको कहते हैं परखना। लाइफ में हमें 3 बातों को परख कर चलना होता है। कौन सी 3 बातों को? पहला है, हमें बातों को परखना आना चाहिए, सिचुएशंस को परखना आना चाहिए। एक है आखिर बात क्या है, और दूसरा है मुझे वो बात कैसी दिख रही है। अंतर है ना दोनों में, है या नहीं है? है। कई बार लोग समझा के थक जाते हैं, अरे बाबा ये बात ऐसी नहीं है, आप गलत समझ, नहीं मुझे पता है ये बात ऐसी है, मेरे को पता है, हमेशा होता है। जो बात जैसी है मुझे वैसी दिखनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गलत बात है, कोई खराब बात है, भले 4 लोग मिलकर के कहें, अरे खामखाई डरते हो, हम तो कभी नहीं डरते थे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, करो करो हम सब साथ हैं, हमें दिखना चाहिए अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसमें ये नुकसान समाया हुआ है, और ये खराब चीज है, गलत है, हमें दिखना चाहिए, भले 4 लोग बोले साथ में, और अगर मान लीजिए कोई सही बात है ना, कोई अच्छी बात है, सही बात है, कल्याण की बात है, भले 10 लोग मिलकर के कहें, ऐसे थोड़ी होता है, हमने तो कभी नहीं किया, आप कैसे कर सकते हो, ऐसे भी कोई करता है क्या, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आप कुछ नई चीज ही करने वाले हो, कोई जरूरत नहीं है करने की। आपको दिखना चाहिए नहीं, अगर मैंने ये कदम उठाया, अगर ये मैंने चीज अपनाई, इसमें ये कल्याण समाया हुआ है, इसका फायदा मुझे और मेरे अपनों को मिलने वाला है, भले 10 लोग सही बात को गलत कहे, सही बात कभी गलत ना लगे, गलत बात कभी ठीक ना लगे, गलत हमेशा गलत लगे, सही हमेशा सही लगे, इसको कहते हैं परख शक्ति ठीक से काम कर रही है। ठीक है, मान लीजिए आपके बारे में मेरे को आके किसी ने कुछ बताया, कहा दीदी आपको पता है आपकी क्लास में तो ये बड़े प्यार से बैठते हैं, पर इनकी आदतें ना बड़ी खराब है, आपको पता है? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा ये ऐसे हैं, फिर मेरा देखने का नजरिया अगर आपके प्रति बदल गया, उसको क्या कहते हैं पता है आम भाषा में, कान के कच्चे। मैंने कानों से सुना पर आंखों से देख भी तो रही हूं ना, उसको भी तो देखूं। किसी के कहने पर मेरा परसेप्शन नहीं बदलना चाहिए, सही और गलत का निर्णय उसके आधार पर नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी आत्मा की परख शक्ति, मेरे स्वच्छ मन, क्लीन और क्लियर मन बुद्धि से मुझे दिखना चाहिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, किसी के कहने के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। 3 बातों को परखना चाहिए। अच्छा, सभी उठ के प्यार से खड़े हो जाएं। अच्छा, दोनों हाथों को ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें, खींचे, स्ट्रेच करें, छत को धक्का देना है, छत को धक्का देना है, अभी हिला नहीं। अच्छा, हाथों को अच्छे से हिलाएं। अच्छा, एक बार अच्छे से पीछे मुड़ के देखें, वो देखो दादियों की, तपस्वियों की, इतने अच्छे चित्र हैं, आपने देखा कभी हॉल में आके? 80-80 साल इन्होंने मेडिटेशन किया है, इनमें से एक विभूति आज भी हम सबके बीच में है माउंट आबू में। आगे मुड़ जाएं, चलो नींद भागी हाँ, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। जैसे बच्चे को सुबह नला दुला करके तैयार कर दो तो क्या होता है, उसको नींद आ जाती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप में से जो स्नान, मैं समझती हूँ सभी स्नान करके ही आए होंगे, हाँ तो स्नान करके आए ना सुबह सुबह, और आराम और शांति के माहौल में तो हो जाता है, इट्स ओके, बैठिए। अभी क्या करेंगे, अभी फोकस करेंगे, ठीक है, अटेंशन रखिएगा, आपके बहुत काम की चीजें हैं। तो लाइफ में 3 बातों को परखना होता है, एक है बातों को, सिचुएशंस को परखना, दूसरा अन्य आत्माओं को परखना आना चाहिए। अक्सर करके हमें लोग कहते हैं दीदी ये तो जरूर बता दो कैसे करना होता है, हमें लोगों को पहचानना नहीं आता। और आजकल लोग पता है क्या बोलते हैं, देखो अपनी बात को, अपनी कमजोरी को कैसे कवर करते हैं, आम तौर पे लोग कवर कर देते हैं, जैसे हमारी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती सामने वालों की है, कहते दीदी हम ना चलाक नहीं है ना, हमें ना कुछ पता ही नहीं लगता है, हम लोगों की तरह चलाकी नहीं कर पाते हैं, हम लोगों की तरह चुस्त नहीं है, हम लोगों की तरह हेरा फेरी नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए धोखा खाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें परखने के लिए चलाकियां नहीं चाहिए, सिर्फ क्लीन क्लियर मन बुद्धि चाहिए, शुद्ध मन चाहिए। तो दूसरा अन्य आत्माओं को परखना आना चाहिए, माना लोगों को समझना आना चाहिए। कैसे परखें लोगों को? 2 प्रकार के संस्कार हर आत्मा के अंदर होते हैं, किसी व्यक्ति को परखना हो ना उसके संस्कारों से ही उसको परखा जा सकता है, और 2 प्रकार के संस्कार हर मनुष्य आत्मा में कार्य करते हैं। कौन से 2 प्रकार के? एक है प्रबल संस्कार, प्रिडोमिनेंट जिसको कहते हैं, प्रिडोमिनेंटली वो काम करेगा वो संस्कार, मतलब अगर आप 1-2 बार किसी से मिलेंगे ना, 1-2 बार ही अभी मिले हैं,
आपको दिख जाएगा उनके अंदर,
इनके अंदर क्या है और इस आत्मा के अंदर क्या बिल्कुल नहीं है, वो दिख जाएगा।
वो प्रबल है वो संस्कार, वो आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा और जल्दी दिखाई पड़ता है वो।
जैसे मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता हो, अभी अभी कुछ ऐसी गैदरिंग है, कुछ सभा है जहां पे वो व्यक्ति दूर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आपने भी उसमें संगठन में प्रवेश किया, अभी उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, आपसे लड़ाई भी नहीं हुई, झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन उनको देख करके आपको ऐसा लगेगा बाप रे इनके अंदर तो कितना गुस्सा भरा पड़ा है। उनकी एक्टिविटीज में आपको तुरंत दिख जाएगा वो चीज, क्योंकि गुस्सा उनका प्रबल संस्कार है। एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म संस्कार। सूक्ष्म संस्कार क्या होता है? सकल संस्कार, जो सूक्ष्म है, आपको तुरंत नहीं दिखाई भी पड़े, समय अनुसार और परिस्थिति अनुसार ही वो संस्कार काम करेगा। धीरे धीरे बाहर आता है वो संस्कार, एक दो बारी मिलने से आपको नहीं दिखाई पड़े शायद। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको सुनाए, सुनाए? आजकल जो हम लोग केसेस देखते हैं, मान लीजिए आजकल यंगस्टर्स बच्चे शादी करते हैं, ठीक है? यंगस्टर्स मतलब अर्ली ट्वेंटीज, मतलब 21, 22, 23, 24 तक भी। आजकल के बच्चे जो 23, 24 तक भी आते हैं ना, उनके अंदर इतना विजडम डेवलप नहीं होता है, इतनी मैच्योरिटी अभी आई नहीं होती है ना आजकल के बच्चों में, इस उम्र तक भी। हम सबके जमाने में तो 40-50 साल पहले तो आराम से इस समय तक तो मैच्योर हो जाते थे बच्चे। आजकल के समय में इस उम्र के बच्चे मैच्योरिटी नहीं आती है। अब क्या होता है, यंगस्टर्स बच्चे शादी करते हैं, चलो अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं। अरेंज मैरिज में भी आजकल का सिस्टम क्या है, 2-4 बार मिलते हैं, 1-2 बार मिलना होता है, उनको बातचीत करवाते हैं। तो जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, 1-2 बार मिलना होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, अच्छा आपके भी विचार ऐसे, हमारे भी विचार ऐसे, अच्छा आपकी भी पसंद ही है, हमारी भी पसंद ही है, अच्छा आप भी ऐसे मान्यता रखते हैं, हम भी ऐसे मान्यता रखते हैं, आपकी भी ऐसी सोच है, हमारी भी ऐसी सोच है। उनको लगता है मैच तो बिल्कुल परफेक्ट है। प्रबल संस्कार एक दूसरे का दिख गया, 2-4 मुलाकातों में प्रबल संस्कार दिखता है, या 8-10 मुलाकात भी होगा तब भी प्रबल संस्कार दिखाई पड़ जाएगा। उनको लगा मैच तो परफेक्ट है, अब हो गई शादी। अब जब एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं, दोनों आत्माओं के सूक्ष्म संस्कार धीरे धीरे समय अनुसार परिस्थिति अनुसार बाहर आने लगते हैं। अच्छे वाले आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर दूसरे वाले कमी कमजोरियों वाले संस्कार आते हैं तो दोनों को एक दूसरे का शौक पे शौक लगता है। फिर क्या कहते हैं, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अचानक बदल गए, पहले बताया होता तो शादी नहीं करते आपसे, अगर पहले कह दिया होता तो हम कुछ और सोच लेते, पहले बता तो देते ऐसा करना था, वगैरह वगैरह। फिर कहते जाओ अभी हमें आपके साथ रहना ही नहीं है। 3-3, 6-6 महीने में बच्चे डिसाइड कर रहे हैं, शादी जैसे बंधन को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? अरे भाई सामने वाली आत्मा की क्या गलती है, हमारी परीक्षक दिखा गई थी, दिखाई नहीं दिया सूक्ष्म संस्कार। सूक्ष्म संस्कार भी दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई पड़ता, एक बारी में दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन अगर मेरी देखने की नजर ठीक हो तो। अब इसके लिए दूरबीन रखकर सबको देखा तो नहीं जा सकता क्या है इनके अंदर, नहीं। अगर हमारा मन बुद्धि स्वच्छ है, साफ है, क्लीन क्लियर है, इतनी अच्छी लाइट है हमारे अंदर, उस लाइट के अंदर, उस रोशनी के अंदर, ज्ञान की रोशनी के अंदर सब कुछ साफ दिखता है, इतना सा भी दिखेगा क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा बैठा है, एक ऐसी आत्मा बैठी है आपके घर के अंदर,
आपको पता है इनको एक बात कहनी है और आपको पता है आपने अगर सीधा कहा तो ये रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, नहीं करेंगे। तो आपने परख लिया इनको क्या चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट का क्वेश्चन लगाकर अगर इनको दिया जाए ना यही बात, तो ये मान जाएंगे, क्योंकि इनके संस्कारों में भले वो बोलते नहीं है मुझे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दो, लेकिन आपको समझ में आता है इस आत्मा का संस्कार क्या है, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट का क्वेश्चन लगाकर उस बात को दे दिया। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो देख लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। तो क्या हुआ, हमारी बात भी मान ली गई, वो आत्मा भी नाराज नहीं हो गई, वो भी खुश हो गई। अन्य आत्माओं के संस्कारों को समझकर परख कर चलने से चलना चलाना आसान हो जाता है। किसी को अगर मुझे अपने साथ चार कदम चलाना है तो मुझे भी उनके साथ दो कदम चलना पड़ेगा। आप किसी को भी सारा जीवन अपने साथ चला नहीं सकते और खुद सबके साथ सारा जीवन चलते रहें, यह भी संभव नहीं है। कभी चलना है कभी चलाना है, कभी निर्णय करना है कभी परखना है, कभी सहन करना है कभी समाना है। सारा जीवन ना सहन करना होता है, सारा जीवन ना समाना होता है, सारा जीवन हमें चलना चलाना नहीं होता है कभी, ऐसे यही जीवन है ना। पर ये जब आठों शक्तियां विकसित होंगी, अच्छी मात्रा में हमारे अंदर भरपूर मात्रा में शक्तियां काम करती हैं, तो हमारी आत्मा खुद ब खुद गाइड करती है, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा इस समय मुझे बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए, ये बात राइट है या रॉन्ग है, भले सब लोग क्या भी कह रहे हैं मुझे ये बात कैसी दिख रही है, इस आत्मा भले ये आज कह कुछ रहे हैं पर इसके पीछे की सत्यता क्या है आपको पहले से दिखाई पड़ेगा। ठीक है हाँ, फिर हम धोखा नहीं खाएंगे बातों से, परिस्थितियों से, लोगों से धोखा नहीं खाएंगे। तीसरी बात किसको परखना चाहिए, तीन बातें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है परखना, सिचुएशंस, अदर पीपल एंड मी माइसेल्फ। हमें खुद को भी ठीक से परख के चलना चाहिए। कैसे परखें, अपने को कैसे परखें, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी विशेषताएं, उसकी अच्छी परख होनी चाहिए। अच्छी परख का मतलब है डीप रियलाइजेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ ऑफ योर क्वालिटीज, ऑफ योर टैलेंट, ऑफ योर स्किल्स, ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, डीप रियलाइजेशन। पता होने से कुछ नहीं होता है, हाँ मुझे पता है मेरे अंदर ऐसा है, लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा कह दिया, नहीं। डीप रियलाइजेशन का अर्थ होता है गहरी महसूसता होनी चाहिए मेरे अंदर क्या विशेषता है। गहरी रियलाइजेशन होने से क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको ये भी कह दे ना यू आर गुड फॉर नथिंग, आपसे तो कोई काम ढंग का नहीं होता है, तब भी हमारा मन इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगा। मन में क्या आएगा, नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मुझे पता है समय आएगा तो मैं कर जाऊंगी, हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हमारे मन का कॉन्फिडेंस सामने वाला नहीं तोड़ पाएगा कभी भी। आज क्या होता है, सामने वाले के कहे अनुसार हम अपनी इमेज, अपनी नजरों में अपनी वैल्यू सामने वाले को हिसाब से बनाते हैं। और पता है सत्यता क्या है, ज्यादातर लोगों के साथ सामने वाला बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी नजरों में भी हमारी वैल्यू कुछ खास नहीं है। है ऐसा आपके साथ नहीं, आपने किसी को ऐसा देखा है, उनकी अपनी ही सेल्फ इमेज अपने मन में कुछ खास नहीं है। जिसकी अपनी सेल्फ इमेज खराब होती है ना अपनी नजरों में, अपनी नजरों में अपनी वैल्यू कुछ खास नहीं है, वो हमेशा ही दूसरों के बनाए हुए इमेज को अपनी सत्यता बनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, अपना ही सेल्फ इमेज डाउन है, सामने वाला भी मुझे कुछ खास नहीं समझ रहा है, अब मेरा कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगा, हमेशा ही डाउन रहेगा।
इसलिए अपनी विशेषताएं, अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यू सिस्टम की डीप रियलाइजेशन होना जरूरी है, पर रियलाइज करने के लिए, महसूसता करने के लिए मुझे टाइम तो चाहिए ना, अपनी आत्मा को टाइम देना पड़ेगा, मन को महसूस कराना है। मन को महसूसता चाहिए, पर मन महसूस ही नहीं कर रहा है तो क्या करें, मन को टाइम देकर महसूस कराना पड़ेगा। मेडिटेशन वो टाइम है जब हम रियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, जब हम अपने मन बुद्धि के साथ बैठते हैं तब रियलाइज करा सकते हैं मन को। चलते फिरते दौड़ते भागते बहुत सारी जिम्मेवारियों के बीच में हम महसूसता ही नहीं कर सकते हैं, थॉट्स चला सकते बस। ऐसे ही हमारी अपनी आत्मा के अंदर कमी कमजोरियों की भी डीप रियलाइजेशन होनी चाहिए। मेरे अंदर कमजोरी क्या है, मेरे अंदर क्या वीकनेसेस हैं। कई लोग बड़े आजकल हंसते हंसते बोलते हैं, हाँ मुझे पता है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर मैं एक मिनट में ठंडी भी हो जाती हूं, सपोर्ट भी कर देते हैं साथ में। क्या फर्क पड़ता है आप एक मिनट में ठंडे हो रहे हैं या एक साल में ठंडे हो रहे हैं? जो गुस्सा ने काम करना था वो तो हो गया ना, जो काम गुस्से ने बिगाड़ना था वो तो हो गया ना। क्या फर्क पड़ता है आप एक मिनट में ठंडे होते हो या एक साल में ठंडे होते हो? इसलिए कभी अपनी आत्मा की कमी कमजोरियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ती चली जाएंगी। जब हमारे को अपनी विकारों की, कमजोरियों की, कमियों की, वीकनेसेस की रियलाइजेशन होती है, महसूसता होती है ना, तब परिवर्तन आता है। इसलिए हमारे यहां शिव बाबा एक बहुत अच्छी बात हमको सिखाते, एक स्लोगन दिया हुआ है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हमको विश्व नहीं बदलना है, हमको सिर्फ हम सबके पास लिस्ट में होता है, चार लोग ऐसे होते हैं जिसको हम पूरी जीवन ट्राई करते हैं बदलने की, पीछे ही पड़े रहते हैं उनके, अब छोड़ दो वो लिस्ट, क्योंकि बहुत साल ट्राई कर लिया, रिजल्ट पता है ना क्या है। तो अभी क्या करना है, स्व परिवर्तन, स्व सशक्तिकरण, स्वनिर्माण, ठीक है। हाँ, तो परख शक्ति अर्थात ठीक से हर बात, हर व्यक्ति, खुद को, अपनी कमी कमजोरियां, अपनी विशेषताओं को समझ करके चलना। ऐसे हमारे अंदर समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं। पर वो शक्ति पता तो हो क्या है, तभी तो हम विकास कर सकते हैं ना उन शक्तियों का। तो जब आप कोर्स करेंगे, मेडिटेशन कोर्स को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, तो आपको ये सब जानने मिलेगा, समझने मिलेगा। अच्छा, अभी एक मिनट साइलेंस के साथ, और एक बहुत सुंदर गीत बजने वाला है शक्तियों का, उसके साथ हम उन शब्दों को अनुभव में लाएंगे, ठीक है। ओम शांति।